नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट। देश के 13 राज्यों की 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जहां हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस ने तीनों विधानसभा सीटों और मंडी लोकसभा सीट पर क्लीन स्वीप किया, तो वहीं टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। लोकसभा की 3 सीटों में से भी बीजेपी सिर्फ मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई। उसके लिए राहत की खबर असम से ही आई। राजस्थान और कर्नाटक में भी कांग्रेस ने उसे झटका दिया। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव के ये नतीजे क्या कहते हैं, यही समझने की कोशिश करते हैं नदीम जी से, जो नवभारत टाइम्स के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर हैं। नदीम जी, कई एक्सपर्ट्स इन नतीजों को सेमीफाइनल कह रहे हैं। जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव के नतीजे क्या संदेश दे रहे हैं?
अक्षय जी, इनको हम सेमीफाइनल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इसको एक अलग इसलिए बहुत ज्यादा इनका महत्व यह था कि जिन राज्यों में ये चुनाव हो रहे थे वो अलग अलग इलाकों के थे और अलग अलग मिजाज के थे, और उनकी संख्या भी 29 विधानसभा की सीटों की थी और 3 लोकसभा की थी। तो एक माना जा रहा था कि एक देश का एक मूड क्या बन रहा है इस वक्त, किन पार्टियों के पास के प्रति उसका रुझान है या किन पार्टियों को लेकर उसकी नाराजगी है, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रति उसका क्या नजरिया है, उसका कुछ परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन जो नतीजे आए हैं उनको हम मिश्रित रूप से देख सकते हैं। उनमें हर पार्टी को झटका भी लगा है और हर पार्टी के लिए खुशी पाने का मौका भी लगा है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी पार्टी को बहुत ज्यादा कोई झटका लगा है या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर किसी पार्टी को कहीं पर खोया है तो कहीं पर वो उसने पाया भी है। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्षेत्रीय दलों का दबदबा बढ़ा है तो ये भी एक बात इसमें सामने आती है, क्योंकि शिवसेना ने पहली बार महाराष्ट्र के बाहर अपनी जीत दर्ज करी है और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपनी ताकत बढ़ाई है। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो नतीजे हैं वो मिश्रित हैं। सभी पार्टियों को इसमें अपने खुशी का भी मौका तलाश सकती है, दुख का भी मौका तलाश सकती है।
हिमाचल के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस बीजेपी पर काफी हमलावर है। उसने कहा कि जनता का मूड बदल रहा है और ये कृषि कानूनों और पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ वर्डिक्ट है। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये भी उसका कहना है। कैसे आकलन करेंगे आप इसका?
दरअसल उल्टी गिनती तो हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर उल्टी गिनती शुरू हुई होती तो शायद बीजेपी मध्य प्रदेश भी नहीं जीत पाती, बीजेपी असम भी नहीं जीत पाती और जो एनडीए जेडीयू के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ रहा था वो भी नहीं जीत पाता। तो उल्टी गिनती जैसी बातें तो नहीं कही जा सकती हैं। बीजेपी को जो झटका लगा है उससे उसके जो जिन राज्यों में लगा है वहां के मुख्यमंत्रियों के लिए जरूर एक ये खतरे की घंटी मानी जा सकती है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में बेशक वहां पर बीजेपी के लिए ये झटका है, कांग्रेस ने वहां जीत दर्ज करी है, लेकिन बीजेपी से ज्यादा बड़ा झटका वहां के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, जयराम जी, उनके लिए है, क्योंकि उनके खिलाफ वहां बहुत पहले से बगावत जैसी स्थिति थी, उनको हटाने के लिए एक दिल्ली तक लोग आए हुए थे। तो इन सीटों के हार जाने से बीजेपी को जितना ज्यादा नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा अलार्म खतरे की घंटी जो है वहां के मुख्यमंत्री के लिए बजी है। इसी तरह की स्थिति कर्नाटक में भी आप कह सकते हैं। जिस तरीके से येदियुरप्पा को हटाया गया था, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद से नहीं हटना चाहते थे लेकिन मजबूरी में हटे, और उसके बाद वहां के जो नए मुख्यमंत्री बोम्मई जी हुए थे उनको ये साबित करना था कि वो येदियुरप्पा के बगैर अपने बल पर बीजेपी को खड़ा कर सकते हैं। येदियुरप्पा का जो लिंगायत वोट था उसके बगैर भी येदियुरप्पा के बगैर भी वो उसको अपने पाले में ला सकते हैं, लेकिन वहां पे भी जो एक सीट बीजेपी हारी है वो बीजेपी को झटका कम, वहां के जो नए मुख्यमंत्री हुए हैं बोम्मई साहब उनको ज्यादा झटका है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी को जिन राज्यों में नुकसान हुआ है वहां पर पार्टी से ज्यादा वहां के मुख्यमंत्रियों के लिए ये खतरे की घंटी है।
और अगर आप कह रहे हैं कि मिश्रित नतीजे हैं तो क्या कोई एक मुद्दे ने काम नहीं किया? क्या जो जिन राज्यों में चुनाव हुए वहीं के लोकल फैक्टर काम कर रहे थे? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि कृषि कानून और बढ़ती महंगाई के खिलाफ वर्डिक्ट है।
देखिए, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों ने काम किया है। अगर ये महंगाई के खिलाफ ये मुद्दा होता तो असम में 5 की 5 सीटें कांग्रेस क्यों हार गई, वहां पर भी बीजेपी को हारना चाहिए था, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हारना चाहिए था कि अगर महंगाई का मुद्दा वहां पर भी होता, बिहार में भी वहां पर जो एनडीए जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए लड़ रहा था वहां उसको हारना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि महंगाई का मुद्दा कहीं नहीं काम नहीं उसने किया है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग विषय थे, अलग अलग मुद्दे थे जिन्होंने इस चुनाव को प्रभावित किया है। हम हिमाचल प्रदेश के फिर से आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के अंदर बहुत लंबे समय से गुटबाजी चल रही है, वहां के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए बीजेपी के अंदर ही बहुत समय से मारामारी चल रही है, और जिस समय उत्तराखंड और कर्नाटक में बदलाव हो रहा था उस समय वहां महाराष्ट्र के बदलाव के इच्छुक लोगों का दिल्ली में डेरा जमा हुआ था, और अब इस नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाए जाने की मांग कहीं ज्यादा जोर पकड़ सकती है।
हिमाचल को लेकर कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन उसके लिए बिहार का अनुभव काफी कड़वा रहा है। वहां वो अपनी पुरानी सहयोगी आरजेडी से अलग होकर लड़ी, पर उसका हश्र ठीक नहीं दिखा।
बिल्कुल, बिहार में का जो नतीजा रहा है वो जेडीयू के लिए बहुत ज्यादा उत्साह भरने वाला रहा है। जेडीयू ने साबित कर दिया है कि वो उसकी राज्य में उसकी पकड़ कमजोर नहीं हुई है। वहां पर जो इन झटका है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा है। कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो आरजेडी के साथ हट कर वो अपनी एक नई जमीन तलाश कर सकती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई है। तो अब आरजेडी और कांग्रेस दोनों का साथ आना बहुत मुश्किल होगा, और कांग्रेस बिहार में उसकी स्थिति और ज्यादा कमजोर होगी, और बिहार से कमजोर होने का मतलब ये होगा बिहार में आरजेडी के साथ उसके जो रिश्ते खराब होंगे उसका असर केंद्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि तमाम क्षेत्रीय दल पहले से ही कांग्रेस से खुश नहीं है।
पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही बीजेपी से टीएमसी में वापसी करने वालों की कतार लग गई थी। वहीं बाबुल सुप्रियो जैसा बड़ा चेहरा भी टीएमसी में चला गया, जो बहुत बड़ा झटका था बीजेपी के लिए। अभी वो उससे उभरी भी नहीं कि उपचुनाव में ये जबरदस्त झटका। क्या बीजेपी के लिए अब इस राज्य में कोई उम्मीद बची है भविष्य में?
बीजेपी के लिए तो फिलहाल वहां पर स्थितियां बहुत ही कठिन होती जा रही हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं उसमें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है अपने को फिर से खड़ा कर पाना। तो इन चुनावों में जो दो सीटें तो जिन चार सीटों पर चुनाव हुए थे उसमें से दो सीट तो टीएमसी की पहले से थी और दो बीजेपी की थी, जिनको टीएमसी ने आज छीन लिया है। तो जो टीएमसी का बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर वाला रुख है वो बीजेपी को वहां बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर रहा है, और बीजेपी के लिए वह उस राज्य में फिर से अपने पांवों पर खड़े होना, या जैसे कि विधानसभा के आम चुनाव से पहले उसकी मजबूत स्थिति कही जा रही थी उसके उसमें फिर से उसी स्थिति में आने में बहुत समय लग सकता है। तो कहा जा सकता है कि टीएमसी ने बंगाल में अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है।
और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके असर की बात करें, क्या ये जो तमाम पार्टियां हैं इनको अपने जो इनका मुद्दे हैं उनको पर कुछ रणनीति बदलने की जरूरत है, या वो इसी पर अग्रेसिव तरीके से अब आगे बढ़ेंगी?
देखिए अक्षय जी, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन पांचों राज्यों के मुद्दे अलग अलग हैं, वहां के राजनीतिक समीकरण अलग अलग हैं, इन चुनावों से वहां के चुनाव प्रभावित होंगे ये नहीं कहा जा सकता है, या यहाँ के जरिए वहां की रणनीति कोई पार्टियां बनाएंगी वो भी नहीं कहा जा सकता है। हर राज्य के लिए पार्टियों के अपने मुद्दे हैं और वहां के हिसाब से वो अपनी रणनीति बनाएंगी। तो इन पांच राज्यों इन विधानसभा चुनावों के उपचुनावों के नतीजों के जरिए पांच राज्यों की रणनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है।
जी नदीम जी, इस विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।